ओम शांति। उषा बहन जी का हम एक हाथ की ताली से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं। आपके कार्यक्रम पीस ऑफ माइंड चैनल, अवेकनिंग चैनल में प्रसारित होते रहते हैं। आप पॉलिटिशियन विंग की हेडक्वार्टर कोऑर्डिनेटर हैं। सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कोर्स भारत की अनेक प्रतिष्ठित कंपनियों में आपने कराया है और गीता ज्ञान का सत्य आध्यात्मिक रहस्य पर भी आप प्रवचन करते हैं। आपको जाम्बिया अफ्रीका से ज्ञान मिला और उसके बाद यहाँ मुंबई हैदराबाद में आपने समर्पित रूप से प्रारंभ में अपनी सेवाएं दी और फिर 1993 से मधुबन हेडक्वार्टर में रह करके ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपने विदेशों में भी, मैं समझती हूँ, पांचों ही महाद्वीपों में भ्रमण करके अपने ज्ञान योग के अनुभवों से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। आप अथक सेवाधारी हैं और दृढ़ता से सफलता प्राप्त करना ये आपकी विशेषता है। तो अभी बाबा ने जो हमको अंतिम मंत्र दिया, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनना, जो संपूर्णता की निशानी है, तो कैसे मनसा निराकारी हो, वाचा निरहंकारी और कर्मणा निर्विकारी बने, उस विषय पर स्पष्ट करेंगे।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहुत सुंदर समय पर आए हो मधुबन में, इसीलिए आप सबका बहुत बहुत हार्दिक वेलकम भी है। अभी तो जाने के दिन आ गए आप सबके। हाँ, कल जाना है, बाबा मिलन के बाद जा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए बाबा ने एक ऐसा सुंदर चांस आप सबको दे दिया। बीच में लॉटरी लग गई ना आप सबकी। हाँ, बम्पर निकला। हाँ, बम्पर ड्रॉ लग गया आपका, बहुत अच्छी बात है। फिर अच्छा लगा मधुबन की बट्टी। हाँ, स्मॉल ग्रुप होता है, छोटा ग्रुप होता है तो और अच्छा लगता है, बड़े ग्रुप में तो पता ही नहीं चलता है, लेकिन ये छोटा ग्रुप में नेचुरल है, बहुत अच्छा महसूस भी होता है। बाबा ने जो विषय आज दिया है, निराकारी निरहंकारी निर्विकारी, ये तो हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जब लास्ट में संपूर्णता का प्राप्त किया तो उस समय जैसे बच्चों को एक इशारा दे दिया कि बच्चे आपको ये तीन महामंत्र याद रखना है और फोकस करना है उसी के ऊपर कि हम भी अपनी स्थिति को इसी मंत्र के आधार से बना सके। उसमें भी जैसे कहा कि मनसा निराकारी हो, वाचा निरहंकारी हो और कर्मणा निर्विकारी, ये तीन स्वरूप से ही हम उस संपूर्णता की स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो निराकारी स्थिति ये फाइनल स्टेज है, जिसको कहा जाए कि मुक्तिधाम में जाना है। बाबा हमेशा ये दो बात कहते हैं, मुक्तिधाम और जीवन मुक्तिधाम। तो वास्तव में मुक्तिधाम की स्टेज है, ये जीवन मुक्तिधाम की स्टेज नहीं है। जीवन मुक्तिधाम की स्टेज निरहंकारी निर्विकारी है, लेकिन मुक्तिधाम की स्टेज जो है, क्योंकि पहले हमें घर जाना है, तो मुक्ति धाम की स्टेज है हमारी निराकार स्थिति। तो निराकार स्थिति कैसे बनेगी, तो उसके लिए हम ये स्मरण रखें, स्मृति में रखें कि निराकारी स्थिति माना बिंदु स्वरूप स्थिति। तो बिंदु स्वरूप स्थिति को प्राप्त करने के लिए बिंदु लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे मन के अंदर इतने सारे विचार चलते रहते हैं, कभी कंफ्यूजन के भी होते हैं, कभी टेंशन के भी होते हैं, कभी अनेक प्रकार के सवाल भी मन के अंदर होते हैं। तो इसीलिए अगर मुक्ति धाम की स्थिति को हमें बनानी है, जो हमारी अनादि स्थिति है, और उस अनादि स्थिति में मुझे स्थित होना है, तो उसकी मेन धारणा है, मनसा में भी हम अगर निराकारी स्थिति को अचीव करना चाहते हैं, तो प्रैक्टिकल कर्म में हमें बिंदु लगाना आना चाहिए। अगर बिंदु लगता नहीं है और क्वेश्चन मार्क लग जाए या आश्चर्य का चिन्ह लग जाए, तो भी संकल्पों को विराम नहीं दे सकते हैं। निर्संकल्प और निर्विकल्प स्थिति ये परमधाम की स्थिति है। तो इसीलिए निर्संकल्प निर्विकल्प बनना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले तो स्थूल में जितने भी सारे संकल्प है उसको विराम लगाना बहुत जरूरी है, बिंदु लगाना बहुत जरूरी है। अब बिंदु लगाने का मतलब क्या हुआ? ये तो नहीं है कि भाई बिंदी उठाई और यहां लगा दी तो बिंदु हो जाएंगे। बिंदु होना मतलब, बिंदु लगाना मतलब क्या, क्या समझा है आपने? बिंदु लगाते कैसे हैं? हाँ जी, हाँ। तो स्टॉप तो एकदम तो नहीं होगा ना, ब्रेक तो ऐसी लगेगी नहीं, विस्तार में नहीं जाना, ट्रांसफॉर्म करना। और भी बीत गया उसको भूल जाना, बिंदी वही बिंदी कैसे लगाना चाहिए, वही तो मैं पूछ रही हूं। क्योंकि कोई चीज तो नहीं उठा करके लगा दी और लग गई, बीती समाप्त हो गई, पॉजिटिव एकदम हो गए। ड्रामा का पाठ पक्का होना, अच्छा। और अच्छा, 5,000 साल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है, इसलिए कोई बात नहीं। ड्रामा कल्याणकारी है, अपनी स्थिति में स्थित हो जाना। बिंदु लगाने का मतलब है, जैसे भाई ने कहा, ट्रांसफॉर्म करना विचारों को। अगर नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचार कोई बात को लेकर के चल रहे हैं, तो आज जैसे बाबा ने वरदान में बहुत सुंदर विधि बताई कि मुरली, हाँ, मास्टर मुरलीधर बन जाओ, मुरली को याद करो, मुरली को स्मृति में लाओ, तो क्या होगा कि वो सारी जो विस्तार की बातें चल रही है उसको हम मुरली की पॉइंट से धीरे 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 बिंदु लगा सकते हैं। लेकिन जो बाबा की अभी इशारा है, समय अनुसार, समय अनुसार बाबा का इशारा आप सभी रोज सुनते हैं कि बीच बीच में ड्रिल बाबा की चलती है, और उसमें अक्सर बाबा यही लास्ट में, जब 5 साल बाबा की मुरलियां जो बाबा आते रहे और मुरली चलाते रहे, हर मुरली के बाद बाबा ड्रिल कराते थे, और बाबा कहते थे, बच्चे अब एक सेकंड में आप फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो जाओ, निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। माना इस तरह की जो ड्रिल है, तो उसमें हमेशा आपने ये बात सुनी है बाबा की, अब एक सेकंड में। माना अब जो समय अनुसार बाबा का इशारा है कि बिंदी लगनी भी चाहिए तो एक सेकंड में। क्यों? क्योंकि लास्ट समय जो मिलना है, फाइनल एग्जाम का जो टाइम है, खाली एक सेकंड का होगा, और उसमें पास या फेल डिक्लेयर हो जाएंगे। डिक्लेयर भी कोई नहीं करेगा, हम खुद करेंगे कि अरे फेल हो गए, या खुशी होगी पास हो गए। तो एक सेकंड तक वाला अभ्यास चाहिए। तो बिंदी जो लगनी है, अब तक ये चलता रहा कि चलो धीरे धीरे हम मुरली को रिवाइज करते हुए, मुरली की पॉइंट्स को याद करते हुए धीरे धीरे हम बिंदी लगाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे नहीं होगा। अब अभ्यास ये चाहिए एक सेकंड का, कि एक सेकंड में हम अपने मन के अंदर सारे जो विस्तार है उसको सार में बस बिंदी लगाई, विराम लगाया और फुल स्टॉप, और फिर अपनी स्थिति को आत्मअभिमानी स्थिति में अपने आप को स्थित कर देना। तो बिंदी लगाते ही फिर आत्मअभिमानी स्थिति हमारी इतने अभ्यास में आई हुई हो कि अभ्यास के आधार से हम एकदम एक सेकंड में अपने आप को चेंज कर दे, और चेंज करके सारे विस्तार जो है एक सेकंड में बिंदी लगी और आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, आत्मस्मृति में आत्म अभिमानी होकर के हम अपने आप को स्थित कर दे। तो ये अभ्यास हमारा अभी लगातार होना चाहिए, बीच बीच में जब भी आप देखो कि हाँ बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है कोई बात को लेकर के, बस फुल स्टॉप और आत्मस्थिति में स्थित हो जाओ। जब आत्मस्थिति इतनी अभ्यास में आ जाए, आत्मस्थिति माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाओ। ये अल्टरनेट है, क्योंकि जब तक आपके पास अल्टरनेट नहीं होगा तो विराम लग नहीं सकेगा। जिस तरह एक बच्चे के हाथ में अगर मान लो चाकू आ जाए, अब उसको तो समझ है नहीं कि चाकू से क्या होगा, काट सकता है अपने आप को, लगा सकता है। बड़ा किसी ने देखा, रे बच्चे के हाथ में चाकू आ गया, क्या करेंगे, छीनने जाएंगे, और कस के पकड़ेगा, लगा देगा, रोएगा जोर जोर से आपने छीनने का प्रयास किया तो क्या करेंगे। उसको खिलौना दे दिया, ये देख ये ले, और जैसे ही वो उसको पकड़े तो ये छूटा ये पकड़ा, एक सेकंड लगा ना। तो इसी तरह हमारा मन जो है वो भी एक बच्चे जैसा है, उसको अल्टरनेट कुछ देना पड़ता है। जब तक उसको अल्टरनेट दिया नहीं, उसको पकड़ा नहीं, तब तक ये छूटेगा नहीं, और ये छूटेगा नहीं तो ये हमारी स्थिति को बहुत नुकसान करता जाएगा, हमें इतना डाउन कर देगा अंदर से, हमारी खुशी गायब कर। इसीलिए एक सेकंड वाली स्टेज चाहिए कि यूं छोड़ा यूं पकड़ा। उसके लिए जैसे कहा कि बड़ा समझदार है, बच्चा नासमझ है, ठीक इसी तरह कभी कभी हमारा मन भी ना समझ है, तो हमें आत्मा तो समझदार है, तो समझदार को क्या करना है, उसको देना पड़ता है। मन तो बच्चा है ना, उसको कुछ नहीं मिलेगा तो वही नेगेटिव व्यर्थ सोचेगा वो। इसीलिए आत्मा समझदार है तो माना जीवन के अंदर मैच्योरिटी को बहुत अच्छे से ग्रहण करना है। कल एक बात बहुत अच्छी संतोष दीदी ने सुबह के मुरली क्लास में सुनाई कि बाबा ने कहा कि बच्चे मनसा में भले अगर आ गया तो कोई हर्जा नहीं, वाचा कर्मणा में नहीं आना चाहिए, ये बाबा मुरलियों में कहते रहे, लेकिन मम्मा हमेशा कहती थी कि संकल्पों में भी नहीं आना चाहिए, यहां तक का अभ्यास हमारा होना चाहिए। तो इस तरह से जब हमारा अभ्यास हो लगातार निरंतर, जैसे ही हम देखते हैं कि हमारे मन के संकल्प बहुत तीव्र वेग से भागने लगे हैं और वो भी अगर व्यर्थ और नेगेटिव दिशा में भाग रहे हैं, तो समझदार आत्मा ये अटेंशन रखती है और उसको अल्टरनेट इतना सहजता से दे देती है, जो मन के विचार कब परिवर्तन हो गए पता भी नहीं चला, मन को भी पता नहीं चला। इस तरह से हमें मैच्योरिटी को अपने अंदर ग्रहण करनी है। जैसे मम्मा ये बात इसलिए कहती थी क्योंकि मम्मा के अंदर वो गंभीरता, वो मैच्योरिटी इतनी ज्यादा थी, इसीलिए मम्मा ने उस बात को जैसे सहजता से समझ करके वो उस बात को स्पष्ट कर सकती थी बच्चों के आगे। आज भले बाबा कह रहे हैं क्योंकि समय है अभी, लेकिन देखा कि जैसे ही अव्यक्त हुए तो अव्यक्त के बाद बाबा की वो भाषा बदल गई कि अभी मनसा में भी आना पाप है, मनसा में आना ये भी इम्प्योरिटी है, ये बाबा शब्द यूज करने लगे। तो इसीलिए आत्मस्थिति में अपने आप को टिका देना, आत्मस्थिति यानी आत्मा के सातों गुणों में अपने आप को स्थित करना, वो सातों गुणों का जो ऊर्जा है उसको विकसित करना। जब हम योग में बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, योग में बैठते हैं, आत्मस्थिति में बैठते हैं, माना आत्मा के सातों गुणों की ऊर्जा को हम विकसित करते हैं। उसको ही तो कहा जाता है आत्म अभिमानी। इसीलिए बाबा की मुरली में ये दो शब्द जो आते हैं, एक देही अभिमानी, एक आत्म अभिमानी। आत्म अभिमानी मतलब जब हम सब बातों से निवृत्त होकर के योग में बैठे हैं, सब कर्मेंद्रियों को समेट लिया है, तब हम आत्म अभिमानी हो सकते हैं और वो सातों गुणों की ऊर्जा को हम अपने अंदर विकसित करते हैं। लेकिन देही अभिमानी मतलब कि जब हम कर्म में हैं, उस समय तो आत्म स्वरूप में नहीं स्थित हो सकते हैं क्योंकि हमें अपने इंद्रियों का प्रयोग करना है ना। जब इंद्रियों का प्रयोग करना है, जैसे कोई कार्य कर रहे हैं, आप किचन में काम कर रहे हैं, रोटी बना रहे हैं, तो मन उस समय फ्री है, इंद्रियां चल रही है, रोटियां बना रही है या खाना बना रही है, तो उस समय जब आप आत्मा की सातों गुणों को जो विकसित किया योग में, उस ऊर्जा को हम अपनी कर्मेंद्रिय द्वारा प्रवाहित करते हैं, उस कर्म में प्रवाहित करते हैं, जिसको बाबा कहते हैं कि जब जैसे रोटी बना रहे हैं तो आप उस ऊर्जा को उसके अंदर डालो, पवित्रता की, प्रेम की, शांति की, आनंद की, वो ऊर्जा उसमें जा रही है अपनी कर्मेंद्रिय के द्वारा, उसको कहा जाता है देही अभिमानी स्थिति। देही अभिमानी होकर के हम कर्म कर रहे हैं, अर्थात वो ऊर्जा को हम फैला रहे हैं। जिस तरह देह अभिमान माना, देह अभिमान माना, वो तो ट्रांसलेशन हुआ, मतलब क्या हुआ, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। देह अभिमान का मतलब है जो पांच विकार है या उससे भी जो सूक्ष्म है ना, पांच विकार तो मोटे मोटे हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उसको तो चलो छोड़ दिया, लेकिन जो सूक्ष्म है ना, अनेक प्रकार की कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये जो विकार है, सूक्ष्म विकार, उसकी भी तो ऊर्जा है ना। तो उसका जब स्वरूप बन जाता है और वो ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है, उसको कहते हैं देहाभिमान। जैसे कोई व्यक्ति बातचीत कर रहा है, दूसरा देखेंगे बड़ा देह अभिमानी है, कैसे पता चला, उसको पूछो आप कैसे पता चला, अकड़ के चलता है, रोब है, जोश है उसके अंदर, दैहिक जोश जिसको कहा जाए, दूसरे को तुच्छ समझना, ग्लानी करना, निंदा करना, तो कहेंगे हाँ वो अपने आप को बहुत, तो वो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और जिससे वो बात कर रहा है उसको भी वो नेगेटिव ऊर्जा फील होती है। उसको देह अभिमान कहा, तो देही अभिमानी मतलब, जब वो सातों गुणों की ऊर्जा जो हमने योग में विकसित किया वो हमारी कर्मेंद्रिय के द्वारा प्रवाहित हो हर कर्म में, मधुरता, शांति, शीतलता, उमंग, उत्साह, ये जो सात गुणों के अलावा भी जितने गुण है उसकी ऊर्जा प्रवाहित होती रहे, तो उसको कहते हैं आत्मस्वरूप। कर्म में जो आत्मस्वरूप है देही अभिमान स्वरूप, तो इसीलिए जब कर्म करते हुए आप देखते हैं कि हाँ बीच बीच में मुझे अगर ट्रैफिक कंट्रोल करना, तो एक सेकंड में उस शुद्ध स्वरूप के ऊर्जा को आप प्रवाहित करना शुरू करो। जैसे आप अपनी ऑफिस में हैं, अब ऑफिस में अगर बैठ जाएंगे कोई देखेगा ये क्या हो रहा है, इसको सोचेगा ना, कोई बात नहीं, आप अपना कर्म करो, लेकिन उस कर्म में वो ऊर्जा को प्रवाहित होने दो, है ना। उसको कहते हैं कि हाँ आत्म स्वरूप में स्थित हो गए। एक सेकंड लगा, ये देखो अपने आप को चेक करो, और तब जाकर के अपने संकल्पों को भी विराम दे सकते हैं। निर्संकल्प और निराकारी स्थिति में आप अपने आप को स्थित कर दिए। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं साकारी, आकारी, निराकारी, इसमें आना जाना ऐसा हो जो एक सेकंड में आना जाना हो, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे, इस तरह से। तो मनसा में निराकारी, तो पहले तो बिंदु लगाना आना चाहिए, और वो बिंदु भी एक सेकंड में लगे, यहां तक की स्थिति आ गई हो, और अल्टरनेट में आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, तब वो निरसंकल्प निराकारी स्थिति में सहजता से हम स्थित हो सकते हैं। और अगर दिन भर के कर्म में हमने ये अभ्यास किया तो जब भी बैठेंगे योग में बहुत सहज आना जाना हो जाएगा। ये प्रैक्टिस को बढ़ाते जाना है, ठीक है। दूसरी स्टेज जो कहा वाचा में निरअहंकारीपन, तो निरअहंकारीपन लाने के लिए दो शब्द विशेष याद रखना है। जिस तरह से निराकारी स्थिति के लिए दो शब्द बिंदु और आत्मस्वरूप, इसी तरह निरहंकारी बनने के लिए भी दो बातें याद रखने, दो दो बातें याद रखो बस, ज्यादा पुरुषार्थ लंबा चौड़ा नहीं करो, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। दो दो बातें तो सहज हो जाएगी ना। तो दो बातें कौन सी हमें याद रखनी है, निर्माणता और निमित्त भाव। क्योंकि वाणी के अंदर अहंकार को जो प्रकट करने वाली वो भी दो ही शब्द है, मैं और मेरा, मैं और मेरा, यही दो शब्द अहंकार को प्रकट करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं निमित्त और निर्माण, क्योंकि जब तक निमित्त नहीं समझा तब तक निर्माण नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि पहले निर्माण पीछे निमित्त, नहीं, पहले निमित्त पीछे निर्माण। निमित्त यानी करण करावनहार बाबा है, बाबा कराने वाला है। जब बाबा कराने वाला ये स्मृति में आ जाएगा मैं तो निमित्त हूं, तो सहज हो जाएगा। और दूसरा निर्माण के लिए जब निमित्त अपने आप को समझ लिया, तो जो व्यवहार है या जो वाणी है उसमें निर्माणता सहज दिखाई देंगी। जो बोल में नहीं, तो अक्सर लोगों के रोब आ जाता है, और रोब आ जाने के बाद कई प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, भाव भावना में अंतर आ जाता है, बाद में क्या कहते हैं, मेरा भाव नहीं था, शब्द निकल गए होंगे अहंकार के, तो सूक्ष्म जब अहंकार होता है तो शब्द में निकल जाते हैं, अंदर ज्ञान होने कारण फिर कहते सॉरी मेरा भाव नहीं था, या शब्द को नहीं देखना। बाबा कहने शब्द में भी नहीं आना चाहिए। तो भाव और भावना इतनी शुद्ध हो तब जाकर के वो बातें हमारे भाव और भावना में नहीं आएंगी, नहीं तो बार बार आप कब तक सॉरी करते रहेंगे, माफ करना मेरा भाव ऐसा नहीं था, मेरी भावना में ऐसी बात नहीं है, आप मेरी भावना को समझने का प्रयत्न कर। क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार इतना नेचुरल रूप में फ्लो हो रहा है, जब रियलाइज होता है तब आपको सॉरी करना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा कहे कि ये अहंकार हमारी निराकार स्थिति बनने नहीं देंगे। बाबा ने इसीलिए हम बच्चों को बहुत सुंदर कि मैं और मेरे शब्द का प्रयोग करो भी तो शुद्ध स्वरूप में, मैं आत्मा हूं और मैं मालिक हूं, ये शरीर का प्रयोग कर रही हूं, और मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, ये दो मैं मेरा आप प्रयोग कर सकते हैं। तो बाबा ने अल्टरनेट दे दिया कि अगर ये नहीं करना है तो कई लोग सोचते हैं अगर नहीं करना है तो जब नहीं शब्द आता है ना तो हमारी बुद्धि नहीं शब्द को एक्सेप्ट नहीं करती है, नहीं करना है तो ज्यादा जाएगा। जैसे एक बच्चे को खेलने के लिए दो, ये दो सारा खेलो, भले यहाँ खुला मैदान है, सब कुर्सियां हटा दो, खेलो जितना मर्जी, लेकिन ये दरवाजा नहीं खोलना। हाँ क्या होगा, वो खेलना भूल जाएगा, लेकिन है क्या ये दरवाजा, यही जाना है, इधर इधर ही जाने की जिद। अरे इतना बड़ा मैदान दिया ना तेरे को खेलने के लिए, ये दरवाजे में क्यों तुम अटका हुआ है? लेकिन नहीं कहा ना। ऐसे ही अगर बुद्धि को हमने कहा कि मैं और मेरे का प्रयोग, बाबा ने मना किया नहीं करना है, तो बुद्धि क्या कहेगी, वही करना है उसको, मैं और मेरे का ही प्रयोग करना है। इसीलिए बाबा ने कहा हम बच्चों को, मैं और मेरे का प्रयोग करो, मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाबा, करो ना आप। तो इसीलिए कहीं पर भी अगर हमने लिमिटेशन लगा दिया बुद्धि को, वो बुद्धि को स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि अब तक इतने जन्म हमने अहंकार में गुजारे हैं। जब उसको कहा मैं और मेरा प्रयोग नहीं करो तुम, एक्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए बाबा हम बच्चों को इतना अच्छी तरह से ये बात कहता है, करो मैं शुद्ध आत्मा हूं और मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई, करो। वो बुद्धि को स्वीकार होता है, नहीं शब्द वो एक्सेप्ट नहीं करती है। इसीलिए जब कभी कोई योग लगाता है ना तो योग में बाबा को क्या कहते, बाबा आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, आज सारा दिन मुझे गुस्सा नहीं है, लेकिन उसी दिन अगर चार्ट चेक करो तो क्या होता है, मैक्सिमम गुस्सा आया होता है, क्योंकि आपने नहीं कहा ना तो बुद्धि वो चीज को एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि हम सतयुगी आत्मा है और सतयुग की डिक्शनरी में नहीं शब्द है ही नहीं, नेगेटिव शब्द है ही नहीं, नहीं नेगेटिव शब्द को डिनोट करता है। इसीलिए जब सतयुग के भाषा, हम सतयुगी आत्माएं हैं, उसको आप नहीं कहो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए बाबा पॉजिटिव, बाबा की देखो अव्यक्त मुरलियों में पॉजिटिविटी देखो कितनी हद तक जाती है कि पांच विकारों को भी मित्र बना दो। अभी थोड़े दिन पहले ही वरदान में आए थे, पांच लहंगा उठा करके चले आपके पीछे। सतयुगी आत्माएं है ना, हम कोई साधारण आत्माएं थोड़ी है। हाँ, तो इसीलिए जो है बाबा ने कितनी पॉजिटिविटी के पांच तत्व को भी इस तरह से परिवर्तन, पांच विकारों को भी आप इस तरह से परिवर्तन करो। साधारण आत्माएं थोड़ी है हम, बहुत महान आत्माएं हैं, विशेष आत्माएं हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये परिवर्तन की कला सिखाते हैं। तो करण करावनहार बाबा है, मैं करणहार हूं, तो निमित्त भाव स्वतः जागृत होता है और तब जाकर के निर्माणता हमारी वाणी के अंदर वो रूप, वो भाव, भावना सब में परिवर्तित हो जाती है ना? और तब जाकर के निर्विकार स्थिति। अब विकारों के अंदर अहंकार आ जाता है, लेकिन फिर भी बाबा ने उसको सेपरेट किया, और इसीलिए सेपरेट किया निरहंकारी, इसीलिए क्योंकि जब तक अहंकार जो है दोनों को प्रभावित करता, निराकार स्थिति को भी प्रभावित करता तो निर्विकार स्थिति को भी प्रभावित करता है, क्योंकि सभी विकारों की जड़ तो अभिमान है, देह अभिमान है, इसलिए बाबा ने उसको सेपरेट किया कि निर्विकारी कर्मणा में। क्यों मामा ने कहा कि निर्विकारी कर्मणा में आनी चाहिए, उसके पीछे भी बहुत गहरा राज है, क्योंकि कोई भी विकारों के वश हमने कर्म किया तो ये विकार ही बंधन क्रिएट करता है, और बंधन क्रिएट करता है तो वो आत्मा को उस बंधन में बांधती है, और ये बंधन विघ्नों को क्रिएट जरूर करेगा। तो इसीलिए निर्विकारी कि अगर आपको बंधन मुक्त होना है, निर्विघ्न बनना है, तो उसके लिए निर्विकारी बहुत जरूरी है। जहां विकार है और बंधन क्रिएट न करे ये हो नहीं सकता है, और जितना कर्म बंधनी हो गए फिर उससे छूट करके कर्म संबंध में जान मुश्किल होगा, पुरुषार्थ हमें डबल करना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कहते निर्विकारी बनो ताकि बंधन हमारे फ्री हो जाए, बंधनों से हम फ्री हो जाए, क्योंकि ये बंधन भोगना का अनुभव जरूर कराएगी, बंधन विघ्न भी लाएगी और विघ्न भोगना का अनुभव कराएगी, और जहां भोगना है वहां योग नहीं है, या भोग है या वो योग है। अगर भोग है तो योग नहीं है, योग है तो भोगना नहीं है। इसीलिए बाबा ने ये बात कही, बहुत गहरी बात है ये, बहुत गहरा रहस्य है इसके पीछे कि निर्विकारी मना, अगर साधारण भी कोई भी विकारों के अंश के वशीभूत होकर के भी हमने कर्म किया, मानो ईर्ष्या के वश हमने कोई कर्म किया, ईर्ष्या के वश हमने किसी की निंदा ग्लानी किया, बंधन बना उस आत्मा से, हमारा बंधन क्रिएट हुआ सूक्ष्म में, और ये बंधन जो बना, कल को मान लो कि उस व्यक्ति को पता चले, वो तो चलता ही है इस दुनिया के अंदर, जब पता चलता है तो विघ्न क्रिएट होगा। अब विघ्न जब क्रिएट होगा, वो व्यक्ति को पता चला, उसने आकर के हमें उल्टी सीधी बातें सुनाई, तो उसने जो सुनाई दुख होगा, तो भोगना हुई, तो दुख दर्द की भोगना जरूर होती है। अब ऐसे जब दुख दर्द की भोगना, उस समय योग लगाने बैठो, योग लगेगा? कभी नहीं लगेगा। इसलिए कहा कि जहां विकार है वहाँ निरंतर कोई न कोई प्रकार की भोगना का अनुभव जरूर है, और जहाँ निर्विकारी है वहाँ नेचुरल योगी जीवन है। इसीलिए मुझे याद आता है हमारी प्रेम दीदी जो थी देहरादून वाली, वो हमेशा ये कहती थी, योग लगाने वाले योगी नहीं बनो, योगी जीवन वाले योगी बनो। योग लगाने वाला योगी माना दो घंटा आज मैंने योग लगाया तो बाकी 22 घंटा क्या थे, वियोगी या भोगी क्या थे। तो निरंतर योग मुझे चाहिए, योगी जीवन मुझे चाहिए कि निरंतर मेरी योगी जीवन रहे। तो कल जैसे बाबा की अव्यक्त मुरलियों में हमने सुना, तपस्या और सेवा भाव दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। त्याग तपस्या सेवा तीनों जैसे आपस में कनेक्टेड है। जिस तरह सुख शांति पवित्रता आपस में कनेक्टेड है, दादी जानकी हमेशा कहती थी पवित्रता माँ है तो सुख शांति उसके बच्चे हैं, ठीक इसी तरह जब तक ये मैंपन का त्याग नहीं है, मेरापन का त्याग नहीं है, तब तक तपस्या सही हो नहीं सकती है, और तपस्या नहीं तो सेवा भाव नहीं। तो सेवा में योगी जीवन, ये नहीं सेवा छोड़ करके मुझे योगी जीवन बनाना है, वो बनेगी नहीं। बैठ करके कितना देर योग करेगा व्यक्ति। इसीलिए योगी जीवन हमारा सेवा में ही हो, हर कर्म करते हुए हो। तो उसके लिए विकार के वश अगर रहेंगे तो योगी जीवन नहीं, वो भोगी जीवन ही कहलाता है। और इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं तुम्हें निरंतर योगी बनना है। तुम योगी हो तो योगी एक घंटे का नहीं होता है या दो घंटे का नहीं होता है, निरंतर योगी जीवन है। और योगी जीवन माना ये विकारों के प्रभाव से हम मुक्त हैं। तो इसीलिए जो चाहता है कि निर्बंधन हो जाए, कई बाबा बांधेलियां होती थी बाबा के सामने, जब बाबा हमारे बंधन काटो क्या कहेंगे, बंधन बाबा काटेगा या हमको काटना है हा? हाँ माना मुझे ही करनी पड़ेगी ना, बाबा करेगा बाबा मेरे बंधन। कई लोग योग में भी बाबा मेरे बंधन काटो, फलाने की बुद्धि का ताला खोलो, अरे बाबा थोड़ी करेगा ये काम। बाबा कहते हैं मैं ज्ञान सागर हूँ, मैं ज्ञान देने आया हूँ, समझ दी बाबा ने। बाबा ये सब काम करने के लिए नहीं है कि मैं फलाने की बुद्धि का ताला खोले बाबा, हम एक है क्या बाबा के लिए, हम एक ही थोड़ी है। बाबा कहते हैं आपको अपने बंधन काटने हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म विकारों के वशीभूत आप खुद है, इसीलिए ये भोगना होती है। कल ही मेरे सामने एक बहन का फोन आया, कहती है मेरे को बहुत बंधन है ना, और मेरे सास ससुर जो है मेरे साथ ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं 15 साल से सहन करते करते थक गई। कल बाबा ने कहा, मैंने कहा आपने मुरली आज सुनी या नहीं सुनी, बाबा ने कहा रावण से भी तेज हो, सहन करना पड़े, इतना बाबा ने कहा। तो जब मैंने ये बात कही उसको, फिर उसको मैंने कहा कि देखो बहन, जब वो तेरी सास तेरे को उल्टा सीधा बोले ना, तुम प्रयोग करो। क्या प्रयोग करो? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, 1000 भुजा वाला बाबा मेरे साथ में खड़ा है और ये मेरे सामने बोलने की हिम्मत करे, देखो वो शांत हो जाती है कि नहीं। आप ये स्वरूप इमर्श करो, उसकी बातें नहीं सुनो, उसकी बातें सुनेंगे तो फील होगा, रोना आएगा। तुम ये सोचो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, 1000 भुजा वाला बाबा मेरे बाजू में खड़ा और ये बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती है, देखो शांत हो जाएगी। तो रो रही थी और उतने में उसके अंदर ऐसा जोश आ गया, मैंने कहा खाली फोन पर मैंने तेरे को सुनाया, तेरे अंदर इतना जोश आ गया, तू प्रैक्टिकल में वहां करेगी तो कितना जोश आ जाएगा तेरे का। प्रयोग करो, बाबा क्या ज्ञान प्रयोग के लिए है, खाली सुनने के लिए थोड़ी है, तुम प्रयोग करो। ये देखो ये आत्मा अपनी कमजोरियों के वश है, है? हे बाबा इस आत्मा को भी मुझे शक्ति देना है। बाबा ने कल ही कहा मुरली के अंदर कि मनसा सेवा का मतलब ही क्या है कि जहां लाइट और माइट का प्रवाह फैले, ये तपस्या ही है। अलग से बैठ के तपस्या करने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठ करके आप उसको प्रयोग करके देखो, उस आत्मा को शक्ति दो। किस आत्मा में शक्ति नहीं इसलिए गुस्सा कर रही है, शक्ति दो आप, शांति दो उसको, और देखो वो एक मिनट के अंदर शांत होती है कि नहीं, प्रयोग करके कल मुझे सुनाना। मैंने कहा अभी उसका आएगा फोन है ना, है? कहने का भावार्थ मेरा यही है कि विकार ही बंधन क्रिएट करते हैं और बंधन ही विघ्न क्रिएट करता है। इसीलिए जब उसकी सास बोल रही है, कहती मेरे को बहुत गुस्सा आता है, अब तुमको भी गुस्सा आ रहा है ना, तो क्या हो रहा है, बंधन क्रिएट हो रहे हैं और बंधन कड़े हो रहे हैं, तो उसको रिलीज करना है, उसके बदले और कड़े करते जा रहे हैं। तो इतनी सुंदर विधियां बाबा ने बताई है हम बच्चों को, हर रोज की मुरली में भी विधि जरूर बताते हैं बाबा। बिना विधि के कोई मुरली नहीं होती है, कुछ छोड़ने के लिए बाबा नहीं कहता है, और इसीलिए उस विधि का ही खाली प्रयोग कर ले हम प्रैक्टिकल, तो देखो कितना सहजता से हम फ्री होते जाते हैं और प्रकार के बंधनों से मुक्त होते जाते हैं। ये कंप्लेन्स हमारी सदा के लिए समाप्त हो जाएगी कि बाबा इतने साल के बाद भी मुझे ये भोगना पड़ रहा है, ये भोगना का अनुभव करना पड़ रहा है। हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। इसीलिए मनसा में निराकारी, तो दो बातें उसके लिए ये बताई कि बिंदु और आत्मस्वरूप, आत्माभिमान स्थिति। वाचा के अंदर निरहंकारी के लिए दो बातें, निमित्त और निर्माणता, है ना, और कर्मणा के लिए ये दो बातें, निर्बंधन और निर्विघन। निर्विकारी बनना है तो ये स्मृति हमारी हमेशा रहे कि मुझे अपने आप को निर्बंधन करना, तो अपने आप वो विकारों के वश नहीं होंगे। जैसे ही आप सोचेंगे अंदर स्मृति में आ जाएगा कि ये विकार ही तो बंधन क्रिएट कर, तो बस अपने आप को फ्री रखो। और इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारे पास इतने खजाने हैं, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, इनका प्रयोग करो। ये शक्ति जो बाबा की है, ये शक्ति को जितना हम यूज करते जाते हैं, प्रयोग में लाते जाते हैं, तो सतयुग के अंदर यही गुण में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आई बात? सतयुग की महिमा आप सुनो, सर्व गुण संपन्न, सोले कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी मर्या, सर्व शक्ति संपन्न। कहा सतयुग में शक्ति नहीं होती है, क्योंकि शक्ति दिखाने की जरूरत ही नहीं। लेकिन जो शक्ति यहां हम अपने अंदर भरते हैं, वो सतयुग में गुण में, कला में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए बाबा कहे, बाबा से जो हम शक्ति भर रहे हैं, सकाश भर रहे हैं, ये सकाश और शक्ति हमारे अंदर इतनी ही सद्गुणों को विकसित करेंगे, ये शक्ति ही कन्वर्ट हो जाएगी गुणों के अंदर। और तब कैसे पता चला कि हाँ वो शक्ति कन्वर्ट हुई या नहीं हुई? तो कर्म कुशल, व्यवहार कुशलता, वो गुण में जब परिवर्तित हो जाती है, तो वो गुण में परिवर्तित होते ही कुशलता आ जाती है। कर्म कुशल व्यवहार कुशल, इसलिए कहते हैं ना योग के द्वारा कुशलता आती है। गीता के अंदर भी दूसरे अध्याय में ये बात आती है कि योग से क्या होता है, तो कर्म में कुशलता आती है, व्यवहार में कुशलता आती है। तो वो गुण में परिवर्तित हो गया तो व्यवहार कुशलता आती है। अगर वो शक्ति गुणों में परिवर्तित नहीं हुई तो इसका मतलब वो शक्ति मैं सोच रही हूं लेकिन भर नहीं रही हूं। शक्ति अगर अंदर में समा रही है, भरती जा रही है, जो बाबा ने कहा सहन शक्ति, कल कहा ना सहन जो करता है और शक्ति देता है दूसरों को भी, वही सतयुग के अंदर सहनशीलता हो जाएगी। वहां तो सहन करना ही नहीं है लेकिन वो नेचुरल गुण हो जाएगा, वो नेचुरल गुण के रीति से यहां दिखाई देगा हर एक को। तो वो सर्वगुण संपन्न यहां ही बनना है। ये बहुत सूक्ष्म बात है कि कैसे एक एक शक्ति गुण में कन्वर्ट होती जाती है ना। जिस तरह विकार शक्ति का अभाव है इसलिए उसको परिवर्तित करना है शक्ति में, और वही शक्ति फिर गुण में परिवर्तित हो जाएगी और तभी हम सर्वगुण संपन्न स्वतः बनते जाएंगे। ठीक है कोई क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ इसीलिए ज्ञान भी शक्ति है। ये शक्ति जब यहां ज्ञान की शक्ति हमारे अंदर आती है तब वो नेचुरल मैच्योरिटी के रूप में सतयुग में गुण बन जाएगा, गंभीरता का, सहन ना, समझदारी का नेचुरल गुण हो जाएगा वो। इसीलिए बाबा कई बार कहता है ये ज्ञान नहीं होगा कि मैं आत्मा हूं, सत्युग में यह ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आत्मिक भावना से एक दूसरे के साथ नेचुरल व्यवहार करेंगे, ये नेचुरल योगी जीवन। तो वो योगी जीवन यहां बनाने तब जाकर दैवी जीवन हमारी वहां बनेगी। इतना सुंदर ज्ञान है, खेलते रहो आप ये ज्ञान के शब्दों के साथ, इन बातों के साथ, तो आपको इतना आनंद आता रहेगा सारा दिन और लगेगा कि वाह क्या बाबा की एक एक बात है ना। सतयुग के अंदर किसी को कहा ये सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला, ये शक्ति भी कला में ट्रांसफर हो गई, तो 16 कला संपूर्ण, फिर कहा संपूर्ण निर्विकारी, क्योंकि बंधन मुक्त है, वहां कोई बंधन है ही नहीं, नविघन है, संपूर्ण निर्विकारी है। यहां हमें बंधन भासता है क्योंकि विकारी है अभी भी, निर्विकारी संपूर्ण नहीं बने। तभी बाबा के जब ये लास्ट 3 शब्द हुए और तभी जब भोग के संदेश में पूछा गया बाबा से कि बाबा लास्ट समय का आपका अनुभव क्या था, तो बाबा ने कहा भोग और योग की लड़ाई चल रही थी, वो दर्द पहुंचाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि बाबा के कोई भी ऐसे कर्म बंधन थे ही नहीं तो दर्द कैसे पहुंचा सकता था, तो उसके हाथ पैर ढीले हो गए और योग का विजयी हो गया। तो वो 1 सेकंड में विजयी स्थिति का अनुभव, लास्ट समय जो आएगा 1 सेकंड होगा और 1 सेकंड में, लेकिन उसका अभ्यास जितना निर्विकारी हमने बहुत समय से किया है, तब जाकर के उस भोगना के ऊपर योग का विजय हो जाएगा। और वो विजय की स्थिति कैसी होगी, तो निर्बंधन और निर्विघन, यहां विघ्नों पर विजय प्राप्त करते जाओ और विघ्नों पर विजय प्राप्त कर माना बंधनों से मुक्त होते जाओ, और बंधन से मुक्त होने के लिए निर्विकारी बनो। अगर कुछ भी छोटा मोटा भी विकार होगा तो ये बंधन में बांधेगा जरूर, वो दर्द जरूर देगा, भोगना का अनुभव जरूर कराएगा। या तो किसी ने चलते चलते कोई हंसी कर दी और वो भी भोगना अनुभव होगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं जिसको अभिमान है वो अपमान की फीलिंग आने से भयभीत होता रहेगा, कहीं कोई अपमान न कर दे, कहीं कोई अपमान न कर दे। अभिमान है तो अपमान की फीलिंग आएंगी। अपमान किसका हुआ? अपमान किसका हुआ? उस अहम का, उस अहम का अपमान। अगर अहंकार है ही नहीं तो अपमान की फीलिंग आएगी नहीं, है ना? तो अपमान किसका हुआ? उस अहम का, इसीलिए उसको दर्द पहुंचा, है ना? बाकी जो निरहंकारी है उसको अपमान का भय ही नहीं, क्योंकि उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता है। तो ये है निराकारी निरहंकारी निर्विकारी स्थिति, है ना? सहज है ना? बोलो। कौन सी स्थिति? अशरीर स्थिति। ऐसा है कि अशरीरी स्थिति जो है वो बिंदु रूप निराकारी स्वरूप की है, अव्यक्त स्वरूप जो है वो फरिश्ता स्वरूप है। जो कहते हैं कि अव्यक्त मिलन करो, तो अव्यक्त माना ये व्यक्त का मिलन नहीं है, लेकिन आकारी स्वरूप से जो मिलन हो रहा है, जैसे सूक्ष्म वतन में जाकर के हम बाबा को विजुअलाइज करते हैं और बाबा से मिलन मनाते हैं, ये अव्यक्त मिलन है जो फरिश्ता स्टेज द्वारा ही हो सकता है। समझ में आई बात? बिना फरिश्ता स्टेज के अव्यक्त मिलन नहीं हो सकता है। इसलिए ये दोनों कनेक्टेड है, अशरीरी और निराकारी कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक आप अशरीरी नहीं बनेंगे तब तक निराकारी स्थिति का अनुभव नहीं हो सकता है। इसलिए ये अलग अलग शब्दों का भी बहुत महत्व है, ये सब एक नहीं है। कई लोग समझते ये सब एक है, नहीं, एक नहीं है। अशरीरी होने का अभ्यास करेंगे तो निराकारी स्थिति का अनुभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। देह अगर याद आती रही तो निराकारी स्थिति कैसे हो सकती है, है ना? ऐसा है। और अव्यक्त मिलन का अनुभव करने के लिए फरिश्ता स्थिति का अनुभव करना जरूरी है, तो ही अव्यक्त मिलन संभव है। जी ऐसा है कि बाबा हमेशा कहते हैं कि ये ड्रामा का क्रिएटर डायरेक्टर प्रिंसिपल एक्टर मैं हूं, राइट? लेकिन स्क्रिप्ट राइटर कौन है फिर? हम है, बाबा नहीं है ड्रामा का। हाँ, अपना पार्ट का, माना अपना पार्ट इस ड्रामा के अंदर कैसा होना चाहिए, ये लिबरेशन हमारे पास है, ये स्वतंत्रता बाबा ने हमें दी है। इसलिए कई बार बाबा साकार बाबा ने कहा है बच्चे मेरे से भी आगे जाओ, यानी है हमारे पास कैपेसिटी लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए वो ड्रामा फिक्स हो जाता है। हाँ, इसलिए ड्रामा फिक्स कर दिया हमने, क्योंकि हम अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं ड्रामा के अंदर, क्योंकि क्या है कि ये ड्रामा जो है ना एक वेब है, एक बहुत बड़ा वेब है। आप अकेले नहीं है इस संसार के ड्रामा के अंदर। आपका कनेक्शन आपके परिवार वालों का वो वेब है, समाज के अंदर है वो एक वेब है, इसी तरह दोस्तों के साथ ये अलौकिक फैमिली का एक वेब है। तो एक बहुत बड़ा वेब है ये, है ना। अब इस वेब में आप अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, लेकिन क्या हो जाता है, बार बार विस्मृत हो जाते हैं, और विस्मृत होकर के वो देह अभिमान के वश तो वो स्क्रिप्ट बीच में लिखी जाती है। अब वो स्क्रिप्ट जिसके साथ आपका जो कनेक्शन हो गया देह अभिमान में आकर के, तो उसके साथ का एक वेब आपने क्रिएट कर दिया, क्रिएट हो गया ना। जैसे चेन होती है, दो कड़ी होती है, तो वो दो कड़ी जुड़ी होती है, इस तरह से कड़ी कड़ी जोड़ करके पूरा ड्रामा जैसे चलता है, और इसीलिए वो कड़ी आकर के जुड़ी। लेकिन अगर ये कड़ी को मुझे चेंज करना है तो है आपके पास स्वतंत्रता, तभी पुरुषार्थ का महत्व है, तभी पुरुषार्थ का महत्व है। लेकिन जब संस्कार के वश हो जाते हैं, क्योंकि अगर मुझे अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग चेंज करनी है तो सबसे पहले मुझे अपने संस्कारों को बहुत डीपली चेंज करना पड़ेगा, और वो नहीं करते हैं तो वो ड्रामा फिक्स हो जाता है। वो फिक्स कर दिया आपने, नहीं मना, बैठ के जरूर करो, ये नहीं कि बिल्कुल नहीं करना है, बैठ के जरूर करो, लेकिन कर्म योगी का अभ्यास ज्यादा करो आप। इसीलिए हमेशा आप सेवा कर रहे हैं, तो बाबा ने जैसे कल कहा सेवा भाव के, उसमें मुझे निरंतर वो वाइब्रेशन, शुभ कामना, शुभ भावना के वाइब्रेशंस को प्रवाहित करना है ना। ये सेवा से जिसको भी मेवा मिले इस सेवा का, उसको भी जैसे उसकी भावना का फल देना है, तो ये यथार्थ तपस्या हो गई। संकल्प विकल्प नहीं चलाओ, संकल्प विकल्प चलाया तो न जमा हुआ, न योग हुआ, न आपकी सेवा यथार्थ है। हाँ, न माया मिली न राम। हाँ, वो कर्म योगी भी नहीं कहलाएंगे। हाँ, कर्म योगी उसी का नाम है ना। कर्म योगी माना आप जितना देही अभिमानी होकर कर्म करते जाएंगे, ये नेचुरल कर्म योगी है। जहाँ आपकी इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार हो वो कर्म योगी स्टेज है, जहाँ विकारों के ऊपर आपका संपूर्ण अधिकार हो, वो विकारों को सेवाधारी बना दिया, वो है आपकी कर्म योगी स्टेज। वही कर्मातीत स्टेज तक पहुँचाएगी आपको। ये बताया ना, आप देही अभिमानी होकर कर्म करो, निर्विकारी होकर कर्म करो, उसमें कोई भी प्रकार की कामना न हो, आसक्ति न हो, ये भावनाएं न हो, तो ये कर्म योगी स्थिति है। कर्मेंद्रियों के मालिक होकर के कर्म करो, ये नहीं कर्म कर रहे हैं और उस समय जैसे अंदर में आ गए कर्मेंद्रिय के अधीनता हो, चलो भूख लगी है खा लो, है ना, पहले खा लो फिर। तो माना क्या हुआ, अधीन हो गए ना कर्मेंद्रिय के, तो कर्मेंद्रिय के अधीनता न हो कर्म करते सब, वो कर्म योगी स्टेज है। इसीलिए कहा कि जब बैठ के योग करते हो उसको आत्म अभिमानी कहते हैं, जब कर्म में योग की स्थिति है उसको देही अभिमानी कहते हैं, क्योंकि देह में तो है ना, कॉन्शियस है कि मैं अपनी इंद्रियों को यूज कर रही हूँ, तो उसको यथार्थ रीति से यूज करना, उसको देही अभिमानी कहेंगे। चलो अच्छी बात है ना, तो बट्टी सफल हो गई ना। चलो बाबा को याद करते हैं।